नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि वीएसआर द्वारा संचालित लेयरजेट 45 वीटीएसएस के विमान बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंत्रालय ने बताया है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें उप मुख्यमंत्री के साथ 2 कर्मी और 2 विमानकर्मी सदस्य सवार थे। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि श्री अजीत पवार जननेता थे और कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि अजीत पवार अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान महाराष्ट्र के विकास और खुशहाली के प्रति वचनबद्ध रहे। उन्होंने कहा कि श्री पवार जनसेवा के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज कहा कि संसद का बजट सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। श्री बिड़ला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश है जो पूरे देश का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की भावी नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों की दिशा देता है और आने वाले वर्ष के विकास पथ का सार प्रस्तुत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया जाए जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। बजट सत्र का पहला चरण आज से 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा। बजट सत्र के दौरान सदन की 30 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष की रैली का विषय राष्ट्र प्रथम कर्तव्य निष्ठ युवा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह रैली भारत के युवाओं में कर्तव्य अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना दर्शाती है। एनसीसी पीएम रैली 1 महीने तक चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का भव्य समापन है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए दिशा निर्देश शिक्षा परिसरों में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए हैं और इनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि ये केंद्र राज्य सरकारों और यूजीसी की जिम्मेदारी है कि भेदभाव के नाम पर कानून का दुरुपयोग न हो।
डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा और ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। हैदराबाद में आज विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों ने लोगों को हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य देश में लगभग 350 हवाई अड्डों का निर्माण करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने आज सुबह वंदे मातरम तटीय साइकथलॉन 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से साइकथलॉन को रवाना किया। 25 सदस्यीय यह साइकथलॉन वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है जो अगले महीने की 22 तारीख तक चलेगा। इस वर्ष साइकथलॉन का विषय है सुरक्षित तत्व समृद्ध भारत। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कार्यरत अधिकारियों के तबादले पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार ने बिना उसकी अनुमति के 3 मतदाता सूची पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण के आदेश दिए। इस कदम पर असंतोष व्यक्त करते हुए आयोग ने पत्र लिखकर राज्य सरकार से तबादले के आदेश को तुरंत रद्द करने को कहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत ने व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया है। खबरों में कहा गया है कि हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार समझौतों में से एक है। मौसम विभाग ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।